ओम शांति। एक छोटे से दृष्टांत के साथ हम इस विषय की शुरुआत करेंगे। एक व्यक्ति स्टेज पर आया और उसने बहुत एक मनोरंजक बात, जोक्स कहो या ऐसी बात है, वो सभा में प्रस्तुत की। लोग खूब हंसे, तालियां बजी और बहुत आनंद लिया। दोबारा फिर वो व्यक्ति आया और उसने वही बात फिर दोबारा कही, तो कुछ लोगों ने तालियां बजाई, थोड़े मुस्कुराए। फिर तीसरी बार वो व्यक्ति फिर वही बात को लेकर फिर स्टेज पर आया, तो लोग केवल मुस्कुराए, क्योंकि ये सुनी हुई बातें या ये मनोरंजक बात है वो ऑलरेडी तीन बार सुन चुके। चौथी बार फिर वही वो बात लेकर जब स्टेज पर आया तो लोगों ने अपने को महसूस किया, बड़े बोर हो रहे हैं, ये क्या वही रिपीटेशन कर रहा है। और पांचवी बार जब वही बात लेकर आया तो लोगों के मस्तक की लकीरें भवें तन गई कि ये क्या कर रहा है। कहने का तात्पर्य हमारा यही है कि जब दुख हमारे जीवन में बहुत समय तक आता है या चलता है तो लोग कहते हैं कि अरे इस दुख से मुक्ति कब हो, सुख मिले, आनंद मिले। लेकिन आनंद और सुख भी वही परोसा जाए या मिला जाए तो उससे भी व्यक्ति तंग हो जाता है, क्योंकि सुख आनंद ये अनुभूतियां हैं, उसका मूल आधार है नवीनता। आत्मा चाहती है नयापन, और जब तक नयापन हमारे जीवन में नहीं है तब तक वो सुख में भी, उस आनंद में कुछ विशेष अनुभूति नहीं होती है। वर्ल्ड क्रिएटर बाबा ने ये बहुत अच्छा ड्रामा का क्रिएशन हमारे सामने रखा हुआ है। हम सभी इस ड्रामा के एक्टर हैं, और इस ड्रामा की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस ड्रामा में पूरे 5000 वर्ष में केवल नयापन है, कोई भी रिपीटेशन नहीं है। एक बार मुरली में भी बाबा ने कहा था कि बातों को भी अकल है कि दोबारा ना आए, वो भी 5000 वर्ष के बाद रिपीट होती है। और बच्चे अपनी पुरानी बातों को, पुरानी चीजों को वही बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। माना बाबा ने ऐसा अच्छा ड्रामा बनाया है कि यहाँ की हर एक सुबह, हर एक रंग, हर एक पल, एक बार जो आई वो दोबारा 5000 वर्ष के बाद नहीं मिलते, एक ना मिले दूसरे से। वैरायटी ड्रामा, पार्ट भी नहीं मिलता, जन्म भी नहीं मिलता, शक्ल भी नहीं मिलती, सब नया नया नया, हर पल नया नया होता रहता है। यदि इस सृष्टि चक्र में हम देखें तो सबसे पहले हम देवता वर्ण में आए, फिर वो बदलाव हुआ, क्षत्रिय वर्ण में आत्मा ने प्रवेश किया, वैश्य, शूद्र, और वर्तमान जो हमारा जीवन है वो इस सृष्टि काल का ब्राह्मण वर्ण वाला समय है, वो चल रहा है। ये हमारे इस समय की नएपन की एक विशेषता है, हम सभी ब्राह्मण जीवन में आ गए। कल के बाबा के महावाक्य या हेडलाइन थी, उसमें बाबा ने कहा कि पुरुषोत्तम संगम युग यदि याद रहे तो सतयुग के झाड़ भी दिखाई पड़ेंगे और अपार खुशी का भी अनुभव होगा। हम अपने आप से पूछें कि क्या हमें ब्रह्मा बाबा की तरह सतयुग के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं? विनाश तो दिखाई पड़ रहा है हमारे में से बहुत लोगों को, और हमारे में से बहुत लोग ऐसे भी हैं जो विनाश से भी कोसों दूर हैं। एक बार चर्चा चल रही थी तो कुछ भाई लोग चर्चा कर रहे थे और कुछ भोली माताएं भी हमारी बैठी हुई थी, और भाई लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ऐसा हुआ अभी तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, सारे हैं अब वहां से ये हो जाएगा। तो थोड़े समय तो वो माता सुनती रही, फिर कहने लगी कि भाई साहब अब जाने दो वो लड़ाई की बातें, अब जीवन जीने का आनंद तो अभी तो आया है और तुम विनाश की ओर ले जा रहे हो। कहने का मतलब विनाश फिर भी हम ब्राह्मण इससे अवेयर है, लेकिन वो सतयुग का नजारा जो ब्रह्मा बाबा को दिख रहा वो हमें क्यों नहीं दिख रहा है। जरूर हमें अपना पुरुषोत्तम संगम युग ब्राह्मण जीवन याद जैसे होना चाहिए वैसे नहीं है। श्रीमत अनुसार जब हम मुरली सुनते हैं तो बाबा ने जो कहा, जैसे आज भी बाबा ने कहा था कि शिक्षा पर अटेंशन, श्रीमत पर अटेंशन, तो अटेंशन हम देते हैं लेकिन अटेंशन की हमारी गहराई क्या है। जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे अपने पॉकेट में लक्ष्मी नारायण का चित्र रख दो, अपने हर जगह पर बाबा कहते बार बार निकालो और देखो। हमने देखा अलमारी में भी हमने रख दिया, फ्रिज पे भी रख दिया, सेंटर के कोने कोने में सामने लक्ष्मी नारायण का चित्र हम रख भी देते हैं और हम देख भी लेते हैं, लेकिन क्या ब्रह्मा बाबा को लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते ही जो खुशी, जो रोमांच और जो अनुभूति हो रही है वो क्या हमें उस गहराई में जाने की अनुभूति हो रही है? अभ्यास है, मोटे तौर पर हम श्रीमत का पालन कर भी ले, लेकिन जब तक इन नवीनता का हमने गहराई से अनुभव नहीं किया तब तक वो अनुभूति जो हो रही है वो हमें नहीं हो पाएगी। अभी ही वर्तमान जो बाबा की मुरली चली थी जिसमें बाबा ने कहा कि नई दुनिया का रचयिता अपनी नई रचना को देख रहे हैं और नई रचना हमेशा प्यारी लगती है। मैं परमात्मा की नई रचना, क्या ये मुझे अनुभूति है? ये ब्राह्मण जन्म मर जीवा जन्म। एक बहन एक सेंटर पर आई थी और वो अपनी सारी शेड्यूल को बता रही थी, कहते सवेरे से उठती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, ये करती हूँ, जॉब करती हूँ, रात को ये समेटती हूँ। मुझे लगता है कि पता नहीं मेरा जीवन है या मुर्दा है, मुर्दे की तरह मैं सवेरे से उठकर चलती रहती हूँ एक मशीन की तरह, मुझे लगता ही नहीं है कि जीवन कोई है। धीरे धीरे जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ हम सभी यही थे, कोई मरने की आकांक्षा लेकर जी रहा था कि कब मरे या दुखों से हम हो सकता है पीड़ित थे, लेकिन जैसे जैसे हम ज्ञान मार्ग में आए मर जीवा मरे हुए जो मरने के गीत गा रहे थे वो जीवन का आनंद लेने लगे। हम वही ब्राह्मण कुलभूषण हैं, ब्रह्मा के मानस पुत्र। ब्रह्मा बाबा ने हम सभी को संकल्पों से पैदा किया है। कल भी बाबा ने बताया था ब्रह्मा वल्द शिव बाबा, जब तक ये निश्चय नहीं है तब तक वारिस नहीं बन सकते। हमें ये निश्चय है हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, और ये ब्राह्मण जीवन का हमको विशेष, आप देखेंगे कि आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे, बहुत कम होंगे जिन्होंने साकार बाबा की पालना ली होगी। हो सकता है आप में से बहुत लोग बड़ी दादी दादी प्रकाशमणि जी को भी नहीं देखा होगा, बड़ी दीदी मनमोहिनी जी को भी नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम वो भाग्यवान आत्माएं हैं। वर्तमान में भी अगर हम ज्ञान में आए हैं तो हमारे साथ ब्रह्मा जैसी ब्रह्मा बाप समान, ब्रह्मा की डायरेक्ट संतान, आज भी चार अमूल्य रतन हमारे सामने हैं। दादी जानकी जी, दादी गुलजार जी, दादी रतन मोहिनी जी, ईशु दादी जी, ब्रह्मा समान फिर भी हम भाग्यवान हैं। ब्रह्मा के मानस से पैदा हुए हम, संकल्पों से पैदा हुई परमात्मा की श्रेष्ठ रचना। तो जैसे ही हम ब्राह्मण बने तो बाबा ने कहा कि जन्म, नया जन्म हो गया हमारा सभी का। शूद्र पने के जीवन से बदलकर हम ब्राह्मण जीवन में आए। जन्म का मतलब होता है जीवन बदलना, और बाबा ने यह कहा जीवन बदलना तीन बातों पर आधारित होता है। यदि आपने इतवार की मुरली, 26 जनवरी की मुरली सुनी होगी तो बाबा ने कहा एक है संकल्प, दूसरा संस्कार और तीसरा संबंध। जब इनमें नयापन आ जाता है तो ये नया जीवन कहा जाता है। इसी तरह हम सभी ने संकल्प, संस्कार और संबंध सभी में कहीं न कहीं बदलाव तो लाया है, लेकिन उस मुरली की एक विशेष बात अटेंशन देने लायक बाबा ने जो हमें कही कि यदि हमने इनमें नए युग में, नए जीवन में या नए संकल्प या नए संस्कारों में अगर कहीं पर भी नयापन नहीं लाया और पुराने का यदि अंश भी रह गया है तो सर्व प्राप्ति के अधिकार से हम वंचित हो जाएंगे। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा जो हमें अपार प्राप्तियां करा रहे हैं, यदि हम पूरे पक्के सच्चे ब्राह्मण नहीं बने, अगर इस जीवन के इस तीनों बातों को संपूर्ण बदलाव में नहीं लाए तो जो वर्षा या प्रॉपर्टी या जो अधिकार हमको मिलना चाहिए उससे हम वंचित रह जाएंगे। तो जिसमें बाबा ने यह भी कहा था कि महाराजा राजा का जीवन मिल जाए लेकिन यदि शूद्रपन के संस्कार है तो ब्राह्मण जीवन में जो मिल रहा है उसकी अनुभूति नहीं होगी। छोटे से एग्जाम्पल के आधार पर आपको बता दे कि कैसे होता है हमारा संस्कार या बदलाव नहीं होता है। एक व्यक्ति था जिसको सत्य परखने की बहुत अच्छी शक्ति प्राप्त थी। वो जिसके भी सामने जाता था तो उसके जीवन के सत्य को वो बता देता था। तो राजा ने जब उसके बारे में सुना तो उसको बहुत बातों में, चाहे अपने घोड़े या अलग अलग बातों के बारे में, सत्यता के बारे में पूछा और उसने बहुत सारी बातें बताई। तो राजा को लगा कि मैं अपने बारे में भी पूछूं, मेरे जीवन का सत्य क्या है। उसे पूछा कि मुझे देखकर मेरे बारे में आप क्या सत्य बताओगे। तो उसने कहा बताऊंगा तो सही, लेकिन एक कंडीशन है, आप मुझे फांसी की सजा या मार मत देना तो मैं सत्य बता। राजा ने कहा अभय दान देता हूँ तुम्हें, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो कहा कि राजा आप राजा तो है लेकिन आपके अंदर जो संस्कार है वो भेड़ बकरियां चराने वाले के हैं। राजा को बड़ा बुरा लगा कि मैं राजा, फिर भी उसने सोचा इसने सत्य कहा है। तो राजमाता से जाकर पूछा कि मेरे जीवन का सत्य बता दो। तो राजमाता ने पहली बार ये रहस्य स्पष्ट किया कि वास्तव में तुम राजा की संतान नहीं हो, तुम्हें कहीं ऐसे ही लेकर हमने तुम्हें उत्तराधिकारी बना दिया है, ये बात किसी को भी पता नहीं। तो उस व्यक्ति को बड़ा, राजा को बड़ा आश्चर्य लगा कि इस व्यक्ति ने मेरी सत्यता को कैसे जाना। तो उसने कहा कि राजा आप जब खुश होते थे तो किसी को भेड़ बकरियां, गाय भैंसे, जमीन, ये सब आप खुश होकर देते थे। यदि वो राजा का वंशज होता तो राजवंश, राजकुल वाला क्या करता, अपने गले की हीरे की माला, मोती की माला ऐसे देते, और आपने भेड़ बकरियां, ये यही आपके संस्कार आपके कुल को, खानदान को प्रत्यक्ष कर रहा है। तो यही है कि हम सभी ब्राह्मण बने हैं। कल भी बाबा ने कहा ये हमारा मिशन है, मनुष्य को ब्राह्मण बनाकर ब्राह्मण सो देवता बनाना। लेकिन अगर ब्राह्मण जीवन में हमारा शूद्रपन के संस्कार है तो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, ब्राह्मण जीवन की महानता का, ब्राह्मण जीवन की विशेषता का, ब्राह्मण जन्म की सर्व सुखों की प्राप्तियों का, परिस्ता जीवन का डबल लाइट स्वरूप का और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर नहीं सकते जब तक हम पक्के ब्राह्मण नहीं बने हैं। तो इसलिए आज हम थोड़ा सा अपने अंदर गौर करके देखें कि इस हमारे नए ब्राह्मण जन्म की, शूद्र जन्म से अब मर चुके हैं, बाबा मिलन में आए हैं, सभी नियम और मर्यादाओं में पक्के होकर ब्रह्मा कुमार कुमारी की धारणाएं लेकर हम सभी यहाँ आए हैं, लेकिन ब्राह्मण जीवन की नवीनता क्या है, इसकी जागृति, सबसे पहला बदलाव जब हमने इस ज्ञान को सुना, हमने पहचाना, तो संकल्पों में हमारा बदलाव आ गया। पहला बदलाव किस बात का? हद के संकल्प धीरे धीरे बेहद में परिवर्तन होने लगे। आपने देखा होगा इससे पूर्व का जो हमारा जीवन रहा होगा तो हमारे जीवन के भी लक्ष्य बहुत छोटे छोटे रहे होंगे। पढ़ना है, नौकरी करनी है, या ये बचत करनी है, शादी करवानी है बच्चों की, घर बनाना है, केवल यही सारे कार्यों के प्रति हमारे संकल्प चलने लगे। लेकिन अगर अभी हमसे कोई पूछे कि जीवन में क्या, तो तुरंत हमें लगता है बाबा ने बहुत बड़ा काम दिया है, हमें अपने संस्कारों को बदलना है, पिछले पाप कर्मों को नष्ट करना है, पूरे 84 जन्मों के भाग्य को जमा करना है, कितनी कितनी नई नई बातें हमारे संकल्पों में आ गई सारी। पहले जो हमारा सोचना था वो बहुत आम था, साधारण लोगों की तरह साधारण बातें, लेकिन अब हम महसूस करते हैं हम कुछ खास हो गए, क्योंकि भगवान की नजर पड़ गई, भगवान के काम में आ गए, और इसलिए हमारा जीवन भी क्या हो गया, कुछ खास हो गया। साथ साथ हमारे संकल्पों में बहुत बड़ा जो बदलाव आया कि पहले हम पॉजिटिव भी सोचते थे और नेगेटिव भी सोच लेते थे, लेकिन अब हमारी जो गाड़ी है वो कहाँ जा रही है, केवल और केवल पॉजिटिविटी की ओर। बदलाव आ गया हमारे जीवन में, आप सभी अनुभव करते होंगे। यदि वही है हमारा सोचना तो उसमें बदलने की हमें जरूरत है। जैसे हम बीमार पड़ते हैं और अगर हमारी सेंटर की बहनें पूछती है आप आए नहीं, क्लास में नहीं आए, अरे बहन जी क्या बताए, बुखार आ गया, ये हो गया, मैं उठ नहीं पा रही थी और मैंने 4 दिन क्या कर दी, छुट्टी कर दी, तो ये बात क्या हो गई, आम बात हो गई। ऐसा ही होता है दुनिया में भी, बुखार आता है, लोग सो जाते हैं, छुट्टी मार देते, होता है। लेकिन यदि मुझे थोड़ा एहसास है तो आप देखते हैं कई लोगों को हम ये कहते देखते हैं अनुभव के आधार पर, कहते बहन जी इतना बुखार चढ़ा था, मैंने कहा बाबा बुखार भले चढ़ा है लेकिन मेरे में ताकत दे दो, मैं मुरली क्लास में पहुंच जाऊं, आज बृहस्पतिवार है मैं पहुंच जाऊं, और आप देखते हैं कि उन आत्माओं को क्या होता है, हिम्मत की मदद भगवान दे देता है और वो अपने जीवन में एक पॉजिटिव चेंज। आप देखते हैं घर में मेहमान आ गए, हमने कहा भगवान अब ये कहाँ आ गए, अब कुछ रास्ता निकालो, तुरंत भगवान ने क्या कर दिए, रास्ते खोल दे, कितनी पॉजिटिविटी आ गई। पहले हम परिस्थितियों को स्वीकार करके, समस्याओं को स्वीकार करके हम उसके अनुरूप हो जाते थे, लेकिन अब हमारे अंदर एक बदलाव आ गया, संकल्पों में बदलाव आ गया कि हम अपने को क्या करते हैं, परिस्थिति में अपनी स्वस्थिति को बड़ी कर लेते हैं, समस्या में समाधान कैसे मिलेगा, उस दिशा में हमारे संकल्प चलने लगे। दूसरा बदलाव जो हमारा आ गया वो किसका आया, संस्कारों का बदलाव आ गया। इससे तो आप सभी परिचित होंगे, आप में से बहुत लोग होंगे जो 8 बजे जगने वाले होंगे, 9 बजे जगने वाले होंगे, आप में से बहुत ऐसे होंगे जो व्यसनों के आदि होंगे, सारे संस्कारों को आदतों को बदला। नहाने के एक बार एक सेंटर पे भाई आए और उनको हम ज्ञान की कुछ बातें बता रहे थे, कहते मैं नहीं आ सकता हूँ। हमने कहा क्यों नहीं आ सकते, कहते ये सर्दियों के 4 मास में नहाता ही नहीं हूँ। हमें बड़ा आश्चर्य, 4 महीने ना गर्मियों में ही नहाऊंगा और हम ब्राह्मणों को संस्कारों में कैसा सहज परिवर्तन आ गया। रात को नहलवा दो, दिन में नहलवा दो, कभी भी नहलवा दो, देखो कैसे परिवर्तन हमारे संस्कारों में भी आ गया। और इसी का हम आनंद ले रहे हैं। दुनिया सो रही है, यदि हमको कह भी दिया जाए कि आज तुम्हें बहुत बुखार है सो जाओ, और हो सकता है हम जगे भी, रजाई में से बाबा को देख भी लिया, गुड मॉर्निंग भी कर लिया, कुछ मुरली भी कान में पड़ गई, और अगर 8 बजे भी जगे, लेकिन मन क्या कहता है, आनंद नहीं आया। आनंद तब आए कि ऐसी परिस्थिति में भी हमने क्या कर लिया, जग लिए, बाबा को याद कर लिया, और इसके बाद भले तान के सो गए, बड़ा आनंद। संस्कारों में जो बदलाव आ गया। और तीसरी बात, संबंधों का बदलाव कैसे आया। पुराने कोई भी संबंधों को हमने कहीं भी छोड़ा नहीं है, लेकिन हमारे एक विचारों में बदलाव आ गया। अब तक हमें लगता था ये हमारे साथी, ये हमारे जीवन साथी, ये हमारे बच्चे, ये हमारा परिवार। अब हम उसी बात को, उसी संबंधों को कैसे लेते हैं, पूरे कल्प में ये मेरा अंतिम जन्म, और ये अंतिम जन्म के मेरे जीवन के शिव बाबा के द्वारा दिए हुए ये मेरे संबंध है, ये मेरा ईश्वरीय परिवार। बाबा ने जिस परिवार की पालना के निमित्त बनाया है, ये बाबा का परिवार है, ये बाबा के बच्चे हैं। ऐसे ही तो कहते, और माताएं तो अक्सर यही कहेगी, अरे वो बाबा के बच्चे हैं, वो बाबा के बच्चे हैं। कई बार पति के लिए भी क्या कहेंगे, हाँ आपको पता है बहन जी, वो बाबा के बच्चे, मारे इतनी याद है हमें, अभी वो पति पति नहीं है, लेकिन पति है वो कौन है, बाबा के बच्चे, परमात्मा की संतान। और ये लास्ट जन्म के पार्ट रूप में ये संबंध मुझे मिले हैं। दूसरा, बेहद की भावना में सारा विश्व मेरा अपना, ये ईश्वरीय परिवार मेरा अपना है। अभी भी जो लास्ट 18 जनवरी की बाबा की अव्यक्त मुरली थी, तो बाबा ने कहा सारे कल्प में ये ईश्वरीय परिवार में बैठने का भाग्य कभी नहीं मिल सकता, ये वो महान आत्माओं का संघ है जो सारे कल्प में नहीं मिल सकता। बड़ी इम्पोर्टेंस से हम सभी जब यहाँ इकट्ठे होते तो कितनी खुशी होती है, जब हम तैयारी करते हैं तो भी क्या होता है, कितना खुशी का अनुभव होता है, जाना है मधुबन में, और यहाँ भी आते हैं तो हमें क्या होता है, अच्छा अनुभव होता है, सभी को नयापन का अनुभव होता है कि वही वही पुरानी बातें लगती है। देखो इसका भी आनंद देख लो, एकोमोडेशन भी आपको कभी मिला ब्रह्मलोक में मिला, कभी वहां मिला, कभी प्रकाश कुंज में मिला, इसका भी हम आनंद ले रहे कि नया साथी भी नए नए मिल रहे हैं। पहले टाइम हमारे कमरे में कोई और था, अभी शायद कोई और है। यहाँ की हर चीजों में कितना नयापन अनुभव हो रहा है, संबंध हमारा जुड़ गया इस ईश्वरीय परिवार के साथ, तो ये सारा बेहद का परिवार अपना लग रहा है। और कितना अपनापन है हमारा कि एक बार हम एक प्राइवेट इसी तरह से व्हीकल हायर करके जा रहे थे, कुछ और भी थे, इतने में एक बाबा का लोगो लगा हुए एक कार है वो आगे से गुजरी, और हमारे साथ बैठे हुए एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो दूसरे भाई जो केवल संपर्क वाले थे। उन्होंने कहा भाई क्यों मुस्कुराए, कहा नहीं ये अपनी गाड़ी है। उन्होंने कहा अपनी गाड़ी, कहते नहीं वो ऐसा है वो शिव बाबा का लोगो लगा है ना, तो हमें लगा ये अपनी गाड़ी है। उन्होंने कहा भाई साहब कमाल की बात कर रहे हो, हर तमाम गाड़ियों पे बजरंग बली लगे होते हैं, तो क्या सारी बजरंग बली को मानने वाले सब उसी को अपनी गाड़ी समझते, तुम लोग तो कमाल के हो। लेकिन है या नहीं है बताओ, वो बजरंग बली को मानने वाले अगर किसी भी गाड़ी पर बजरंग बली का स्टिकर देखे तो उसको कभी नहीं लगेगा कि ये हमारी गाड़ी है। लेकिन अगर आप किसी गाड़ी पर शिव बाबा का अगर लोगो देख लिया आपको क्या लगेगा? उन्होंने कहा अच्छा ये आपके है, कौन है आपका? हम कहते ये ना हो तो इसके अम्मा बाबा कोई तो हो गए ही हमारे, क्योंकि ये हमारा। इसका मतलब क्या हुआ? क्यों अपनापन दूसरों को क्यों नहीं लग रहा है? वो देवी को मान रहे हैं, वो हनुमान जी को मान रहे हैं, लेकिन उनका चाहे गणेशाय नमः हो तो भी उनको नहीं लगेगा, उनको लगेगा वो उनका भगवान और वो उनकी गाड़ी है। और हमारा लोगो लगा तो, हमारा झंडा दिखाई पड़ा तो, हमारा संबंधों में देखो कितना बदलाव हमारा आ गया कि ये बेहद कास्ट। दूसरी बात, अपने संबंधों में तो हमने बदलाव किया, लेकिन एक आंतरिक संबंधों का जो बदलाव हमने किया सॉलिड, मेरे सारे सर्व संबंध ईश्वर के साथ, मात पिता बंधु सखा, वही अंदर की एक गहरी अनुभूति। दुनिया के तमाम संबंध हमारे हैं, लौकिक परिवार के बीच में हम रह रहे हैं, लेकिन अंदर की एक अटूट आस्था हमारी है। मेरा सब कुछ कौन है? बाबा। बाबा ईश्वर के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति। भक्ति मार्ग में बहुत गाया मात पिता तुम मेरे, भक्ति मार्ग में बहुत गाया कि तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे, लेकिन अब अनुभूति हुई सारे संबंधों का सुख अनुभव हुआ। ये बदलाव हमारे सभी के जीवन में, और उसमें भी इस संबंधों में एक विशेष जो बदलाव हमारे सभी के जीवन में आया है कि दुनिया में कितने भी संबंध है लेकिन सहारा दाता, दुनिया में संबंध किस लिए होते हैं, क्यों निभाते हम, कि वक्त पर कोई हमें सहारा दे, कोई हमारी मदद करे। लेकिन हम सब सारे संबंधों को लौकिक भी निभाते हैं, लेकिन अंदर का अटूट विश्वास, सहारा दाता मेरा कौन है, कौन है, कोई है दुनिया का? माताओं को कितना नशा होता है, कभी भी कोई बात होती है बच्चे कोई मानते नहीं है तो कहते मत मानो मेरा बाबा बैठा है, हंसते हैं बच्चे कि तुम्हारा बाबा कर लेगा सारे, के देख लेना मेरा बाबा सब कर लेगा। सहारे का अनुभव सारे संबंध दुनिया के हैं, और उस संबंध की अनुभूति ये हमें होने लगी। तो ये जो नयापन हमारा आया जीवन में, साथ साथ इस ब्राह्मण जीवन में एक विशेष बात हमने अनुभव की कि हमारा महत्व इस समय का बहुत है, क्योंकि ब्राह्मणों के बिना संसार का कोई भी कार्य नहीं होता। कोई मर गया तो भी ब्राह्मण चाहिए, शादी है तो ब्राह्मण चाहिए, जन्म हुआ तो ब्राह्मण चाहिए, मुंडन है तो ब्राह्मण चाहिए, सभी बातों के लिए कथा करानी है तो ब्राह्मण चाहिए। हमारा महत्व ब्राह्मण जीवन का कितना बड़ा महत्व है। हर कार्य के लिए हमारी शुभ भावनाएं, हमारी शुभ कामनाएं संसार को चला रही है, नाम के आधार पर चला रही है, कैसे भी चला रही है। इतना महत्वपूर्ण जीवन, और केवल हम महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन साथ साथ हम उस ईश्वर की गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हैं। ब्राह्मण जीवन का एक नयापन क्या है, हम सभी इस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, गॉडली स्टूडेंट है। लेकिन गॉडली स्टूडेंट होने के बाद अभी आपसे पूछे कि क्या आप किताब कॉपी लेकर आए हो, तो पानी की बोतल तो लेकर आए होगे, किताब कॉपी। कितनी अच्छी पढ़ाई है हमारी कि किताब कॉपी ना हो तो भी हमारा काम चल रहा है। बड़ी नई बात है, हमारी पढ़ाई की विशेषता बहुत नई है। क्या नई है? जब हम पढ़ते थे तो हम लोगों को देखते थे, कई लोग थे वो आराम से टीवी जब देखते थे तो हम कहते थे ये कितने अच्छे लोग हैं, ये डॉक्टर बन गए, ये इंजीनियर बन गए, देखो कितनी मौत से अभी टीवी देख रहे। हमारे लिए समय कब आएगा जब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाए, हम भी मौत से टीवी देखेंगे। लेकिन देखो पढ़ाई जल्दी पूरी हो जाए, ऐसा कभी कभी मन में आता। लेकिन जब से ये ईश्वरीय पढ़ाई के हम स्टूडेंट बने, आपको लगता है ये पढ़ाई जल्दी खत्म हो जाए? ये पढ़ाई बड़ी टेंशन वाली है। इस पढ़ाई में क्या लगता है, कभी टेंशन हो तो लगता है जरा जाके पढ़ के आए पढ़ाई तो क्या हो जाएंगे, टेंशन फ्री। कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है, है कोई ब्लैक बोर्ड यहाँ पर? व्हाइट ही व्हाइट, रेड ही रेड, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है। हमारी पढ़ाई की विशेषता है कि हमारी क्वेश्चन आउट हो गए हैं। बड़ा डर लगता था जब एग्जाम होता था, लगता था पता नहीं कौन से सिलेबस में, कौन से पाठ में से कौन से प्रश्न आ जाए। अब हम इतने निश्चिंत हैं कि हमारे पढ़ाने वाले ने हमारे सारे प्रश्न आउट करके रखे हैं कि तुम्हें यही प्रश्न पूछे जाएंगे। बस केवल एक बात है कि इसकी डेट नहीं बताइए। दुनिया में एग्जाम की डेट पहले आ जाती है, लेकिन हमारी पढ़ाई में नयापन क्या है, क्वेश्चन पहले आ गए हैं सारे, क्या क्या तुम्हें करना है। डेट है अलग अलग, हो सकता है आ सकती है। और इस पढ़ाई का आनंद देखो हम कैसे लेते हैं। यहाँ पर हम किसी को इतिहास पढ़ना है तो इतिहास पढ़ सकते, भूगोल पढ़ सकते, भाषा पढ़ सकते, विज्ञान पढ़ सकते, गणित पढ़ सकते, एक ही पढ़ाई। एक मुरली क्लास जिसमें नर्सरी वाला भी पढ़ता है और पीएचडी वाला भी क्या करता है, पढ़ता है। कितनी नवीन बात है हमारे जीवन की, हम सब साथ मिलके। क्योंकि हम जनरली देखते हैं कि अभी एक बार दो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट आए, एक सीनियर थे एक जूनियर थी। अब वो जूनियर को, वो सीनियर को इतना रिस्पेक्ट देना पड़ता था कि ये मेरी सीनियर है, उसको भोग खाना था। लेकिन कह रही वो सीनियर नहीं आएगी, डांट लगाएगी, कहेगी तुमने खा लिया पहले इतना। और यहाँ पर जूनियर सीनियर कितने भी है, लेकिन जब पढ़ते हैं तब हम है कोई। कितनी बड़ी नवीनता हमारी पढ़ाई की है। और इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि दुनिया में लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो एक आधा अधूरा इतिहास, मुगल काल तक का इतिहास पढ़ लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा चंद्रगुप्त मौर्य के समय से इतिहास पढ़ लेते हैं। लेकिन हमारा इतिहास कितना संपूर्ण इतिहास, शुरुआत जहां से, और वो राम राज्य का इतिहास, इसके बाद सारे इतिहास को हम पूरी हिस्ट्री को जान सकते हैं। इतनी सुंदर हमारी ये पढ़ाई है। और भूगोल, अभी हमने एक कोई कवि थे सुल्तानपुरी, वो अपने काव्य पाठ कर रहे थे तो उसमें जो कह रहे थे कि मैं वो हिंदुस्तान को ढूंढ रहा हूँ जिसमें न बांग्लादेश था न पाकिस्तान, एक शेर था वो हिंदुस्तान को मैं ढूंढ रहा हूँ। वास्तव में लोगों की बुद्धि जा ही नहीं रही है। हम उस भूगोल को जानते हैं जिस भूगोल में भारत का जो नक्शा था वो अखंड भारत था, विश्व में एक ही भारत था। ऐसे अखंड भारत को वो ढूंढ रहे हैं, वो भी कौन से, कि थोड़ा सा बड़ा भारत था उस नक्शे को वो ढूंढ रहे हैं। लेकिन हम तो उस भारत को जानते हैं जो अखंड भारत था, उस भारत का भूगोल हम पढ़ते हैं और हम जानकारी रखते हैं। हम ये भी जानते हैं उस भूगोल में कि जहाँ पर सर्दी नहीं होगी, गर्मी नहीं होगी, कैसे मौसम होगा, कैसे पृथ्वी पर जो है मौसम बदलेंगे। दुनिया इन भूगोल को नहीं जानती है, लेकिन हम इस भूगोल का भी आनंद ले रहे हैं कि वो आने वाली नई दुनिया कैसी होगी। इसी तरह गणित, मैथमेटिक्स, जब हम बच्चे थे तो मैथमेटिक्स पढ़ते थे तो गणित जब पढ़ते थे तो 1, 2, 3 से शुरुआत करते थे, फिर हमें बताया जाता था कि 0 लगा दिया तो ऐसे होगा, ये होगा। जैसे ही पढ़ाई में आगे बढ़े तो हमें 0 नल पॉइंट, जो न्यूट्रल पॉइंट थे, उससे भी इंट्रोड्यूस कराया गया। और आगे बढ़े विज्ञान में तो नेगेटिव, -1, -2, -3 सब कुछ पढ़ाया। और वो माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव में हम इतने उलझ गए कि हमारा जीवन ही बर्बाद हो गया। लेकिन अब जो भगवान हमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, वो न्यूट्रल पॉइंट, नल पॉइंट पे, 0 पे अटक गई हमारा। माइनस कोई है हमारे जीवन में? है माइनस पे जाते हम सब कहाँ जा रहे? 1, 2 प्लस 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 प्लस, माइनस है ही नहीं। कितना अच्छा गणित भगवान हमको सिखा रहा है जिसमें माइनस की जरूरत नहीं। और भाषा कौन सी है हमारी? हिंदी है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की भाषा हिंदी है? बिल्कुल नहीं है हिंदी। हमारी भाषा है नैनों की भाषा, संकल्पों की भाषा, रूहानी मुस्कान, ये सब दृष्टि की भाषा, ये हमारी ब्राह्मणों की भाषा। सभी को आती है ये भाषा? सभी को आती है? ब्राह्मण जीवन में हिंदी या और किसी भाषा की भी आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिकल एग्जांपल हम आपको बताएं, आगरा शहर है, वो इंटरनेशनल प्लेस एक तरीके से भारत का है, तो दुनिया के लोग भी बहुत आते हैं, ब्राह्मण परिवार के भी आते हैं, क्योंकि ORC भी है हमारा, तो ORC में आते हैं तो आगरा भी जरूर आते हैं। तमाम अलग अलग भाषा के लोग आते हैं। साउथ का ग्रुप जब आता है, हमें साउथ की भाषा नहीं आती है, उनको हिंदी नहीं आती है, तो भी हमारा कारोबार चलता है। हम आपको बताएं कैसे हमारी ब्राह्मणों की भाषा। एक बार एक साउथ का ग्रुप आया, वो माताएं बहुत खुश थी, ठीक है, सामने बैठते हैं, देखते हैं, ठीक है। और ऐसा हुआ कि वो बस में बैठने जा रहे थे, तो हम उनको सोच रहे थे जल्दी जाए, वो माता खड़ी हुई और कहने लगी कि ऐसे ऐसे। हमने कहा हाँ, तो कहने लगी, मैंने कहा हाँ, कहती सन सन, मैंने कहा हाँ, दृष्टि शांति। आप समझ गए क्या कहा उसने? समझ गए? हिंदी की जरूरत पड़ी नहीं, तुरंत मैंने दृष्टि दी उसको और 1 मिनट में वो कहती शांति हो गया। जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। इससे भी बढ़िया एक अनुभव जो रहा हमारा, एक बार एक कोरिया ग्रुप को लेकर आने वाले गाइड थे, जो टूरिस्ट प्लान करते हैं, वो भाई एक आए, कोरियन थे, और उसको एक भाई लेकर आए। तो जब सेंटर पाए, हम नहीं थे, भाई थे, तो उन्होंने उनको थोड़ा सा इंग्लिश में बताया क्या मेडिटेशन, और फिर सोचा कि इंग्लिश में या ऐसे क्या बताएं, इनको बाबा के कमरे में ले गए। उनको पता नहीं क्या अनुभूति हुई बाबा को देखकर। उन्होंने अपने पूरे ट्रैवल प्लान में 17 ग्रुपों को, कोरियन ग्रुपों को, योगा सीखने के लिए सेंटर के लिए उन्होंने प्लान बना दिया। तो पहली बार हमें जब उन्होंने कहा कि वो आपके पास आएंगे, आप योग क्या सिखाएंगे, तो हमने छोटा सा प्लान कर दिया कि थोड़ा योगासन कराएंगे, मेडिटेशन कराएंगे, और फिर अपने हिंदी गीतों पर थोड़ा एक्सरसाइज करा देंगे, जैसे हम क्लास के बाद कराते, कुछ तो अनुभूति कर ही देंगे। छोटा प्लान बना दिया। पहले दिन उनका जो इंटरप्रिटर था, जो वो आया, तो हम लोगों ने हिंदी में भी बोला तो उसने, या इंग्लिश में बोला तो उसने, कोरियन भाषा में उनको सारा ट्रांसलेशन कराया, मेडिटेशन कराया, सबको बहुत अच्छा अनुभव हुआ, हमें भी अच्छा लगा, ठीक है। फिर दूसरा ग्रुप आया तो उसमें भी कोई था थोड़ा बहुत जो जानता था, तो वो काम चल गया। और जब तीसरा एक ग्रुप आया तो हमें वो बताना भूल गए। और एकदम जब बस सवेरे एकदम कोहरे में बस खड़ी रही और उसमें से सब उतरने लगे, अरे हमने कहा ये तो आ गए। और उनको एक ही शब्द सिखा दिया गया था कि नमस्ते नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते, क्योंकि हमारे तो सब ओम शांति वाले, नमस्ते सुनते ही हमारा अंदर से आया अरे ये तो आ गए। तो फटाफट जो हम लोगों ने भारत की जो परंपरा है उस अनुसार तिलक लगाना होता है, वो तिलक लगा के हमने बिठा दिया। अब हमने पूछा कि आपका इंटरप्रीटर सीखते थे। हमने कहा इंग्लिश, अब इनको क्या सिखाए, मेडिटेशन, तो भी चित्र लगा दिया फटाफट और उनको थोड़े थोड़े शब्दों में। हमने कहा कि ये हड्डी मांस का पुतला, ये ऐसा पावर पावर, सुप्रीम पावर, सोर्स ऑफ पावर, ऐसे ऐसे करके उनको मेडिटेशन में बिठा दिया। फिर थोड़ा सा योगासन और अपने गीतों पर एक्सरसाइज करा दी। फिर हमने कहा और क्या करें, उनको कुछ न कुछ देते हैं तो टोली वगैरह तो नहीं देना होता है, क्योंकि वो थोड़ा उससे वो भी मानते हैं कि पता नहीं क्या खिला देंगे, तो एप्पल। तो हमने जैसे ही पहले व्यक्ति को एप्पल दिया तो हम देखने लगे, क्योंकि अभी और कुछ तो था नहीं हमारे पास देने को, भाषा तो कुछ नहीं, शब्द तो कुछ बोले ही नहीं। हमने कहा देखे, तो वो दूसरे ने देख लिया कि ये जब एप्पल दे रहे थे तो ये देख रहे थे, तो उसने वही परंपरा को क्या कर दिया, चालू कर दिया। उसने भी देखा हमको और एप्पल लिया। तीसरे ने भी, देखो ये ब्राह्मण कल्चर हमारा कैसे उन्होंने छोटे में अडॉप्ट कर लिया। फिर आके कहने लगे ब्रह्मा बाबा के चित्र को देख के कहते ये कहां, ये कहां। अब ये कहां मैं क्या बोलूं, कोरिया भाषा तो मुझे हमें आती नहीं थी। हमने कहा हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर। वो इतने खुश, इतने खुश, और वो 17 ग्रुप पता नहीं क्या लेकर गया। तो क्या ब्राह्मणों की भाषा हिंदी है, दृष्टि की भाषा, नैनों की भाषा, संकल्पों की भाषा, रूहानी मुस्कान। यहां जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो जब देखते हैं एक दूसरे के, तो क्या हमारी भाषा में आता है। हम बेशक ना कहे कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन किसी को भी देखकर ये लगता है आप इनमें कितने अच्छे गुण हैं, ये कितने अच्छे हैं, इनके चेहरे पर कितनी योग की चमक दिख रही है। ये सब कौन सी भाषा है, रूहानी भाषा। तो कितनी अच्छी भाषा भगवान ने, जिसमें शब्दों की भी जरूरत नहीं है और हम आदान प्रदान कर लेते हैं। तो इतना बढ़िया हमारा जो ब्राह्मण जीवन, ब्राह्मण पढ़ाई, ये नवीनता का हम अनुभव करें। यहाँ पर भी हम आए हैं तो यहाँ की भी नवीनता का अनुभव करें। विधि विधान सब बदल रहा है, उसका भी हम क्या करें, बहुत आनंद ले। बहुत छोटी थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन बाबा के कमरे में बाबा से मिले वो मुझे इतना याद नहीं है। हिस्ट्री हॉल में भी मिले वो भी इतनी याद नहीं है, लेकिन मेडिटेशन हॉल में मैं बाबा से मिली वो मुझे याद है। ओम शांति भवन में बाबा से पर्सनल एक एक मुलाकात करते थे वो याद है। फिर विधि बदल गई, सामने बिठाया जाता था वो विधि हुई, फिर नीचे बिठाया जाता था, फिर जोन वाइज बिठाया जाता था, फिर हम सभी शांतिवन में ट्रांसफर हुए। फिर और अभी बाबा आते थे तब हम देखते थे सेवा वाले उठे, फलाने जोनों की सेवा है वो उठे। और अब जो विधि बदल गई है वो कौन सी विधि बदल गई है, हम इसलिए इस बात को कहते हैं ब्राह्मण जीवन बहुत नया जीवन है। और अभी भी जो हम अव्यक्त मिलन करेंगे उसमें भी बहुत बड़ी अनुभूति और आनंद समाया हुआ है, क्योंकि कई बार कई लोगों को हम बोलते देखते हैं, अरे अभी क्या है वो स्क्रीन पे ही तो बाबा देखते हैं। कई लोग कहते हैं अरे कोई भी जा सकता है बाबा मिलन में, क्या है वो स्क्रीन पे ही तो बाबा आते हैं। आप मुझे बताइए स्क्रीन पे बाबा आते हैं, आते हैं स्क्रीन पे, स्क्रीन पे बाबा आ रहे हैं। हम सब अव्यक्त मिलन के लिए आए हैं, स्क्रीन पे बाबा आएंगे, आएंगे? आपका दिल कह रहा है स्क्रीन पे होगे बाबा, कहाँ होगे? इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार है, ईश्वरीय परिवार का जब संगठन होगा, और भगवान अपने बच्चों के बिना रह नहीं सकता। भक्ति मार्ग में वो नंगे पैर हमारे बुलाने पर दौड़ कर आ गया, तो क्या इस अव्यक्त मिलन में हमसे मिलने नहीं आएंगे बाबा? बताओ आएंगे या नहीं? जरूर आएंगे, लेकिन इसके लिए एक बात की आवश्यकता है कि विधि जरूर बदली है लेकिन नियम और मर्यादाएं आज भी नहीं बदले हैं। बाबा से मिलने का हमारा जो नियम है, ब्राह्मण जीवन का नियम है, वो सबसे पहला नियम मर्यादा है पवित्रता। पवित्रता से समझौता करके कभी भी हम बाबा की अव्यक्त अनुभूति नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम अपने इस नियम और धारणाओं को इतना पक्का रखें, बाबा मिलन के लिए हम वही आत्माएं हम आए, हम अपनी तैयारी करें, क्योंकि बाबा साक्षात यहाँ अभी भी हमें वरदान देंगे तथास्तु का। जितनी जितनी जिसकी प्योरिटी बढ़ती रहेगी, उतना वो ब्राह्मण जीवन का भगवान के साथ सूक्ष्म पालना का अनुभव वो उतना ही करता रहेगा। इसलिए अभी जो अव्यक्त मिलन हमारा है उसमें भी बहुत नयापन है। अगर यदि आप अनुभव करके देखें तो ये ब्राह्मण जीवन हमारा नया बदलाव का, अभी भी हमारे पास 4-5 दिन जो है हम अपने को बदल दे, संकल्पों को, हमारे संस्कारों को और हमारे जो संबंध है उसके प्रति भी हमारा दृष्टिकोण, मधुबन को देखने का भी हमारा दृष्टिकोण बहुत नया हो। एक छोटी सी बात हम बताएं, हमने शायद सुना ही है कि एक भाई यहाँ पर आए थे, बहुत अच्छे थे, संपत्तिवान थे और यहाँ किसी विशेष कार्यक्रम में आए थे, तो उन्होंने अपना एक अनुभव बताया था। तो उन्होंने कहा, मैं दुनिया में कितनी होटलों में मैं रुका हूँ, 5 स्टार 7 स्टार, लेकिन ये 0 स्टार वाली जो होटल है वो मैंने संसार में कहीं नहीं देखी। आप भी इसको देख लीजिए, ये 0 स्टार का ये स्थान है, कितना अच्छा है। हर बातों को देखे आप देखेंगे बहुत नया नया पाएंगे आप, बहुत नया नया, और यही उमंग उल्लास आपको आपकी इस अव्यक्त मिलन की यात्रा को बहुत ही सफल बना देगा। तो इसलिए हम ये बदलाव करें अपने जीवन में, नया देखने का, हर पल हमारा नया हो, क्योंकि हम वही श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण आत्माएं हैं जिनको भगवान ने, ये भी अव्यक्त मुरली में बाबा ने एक बार बताया था कि ब्राह्मणों को सबसे बड़ा जो श्रेष्ठ भाग्य है वो 6 प्रकार का प्राप्त हुआ है, नाम का भाग्य। आज भी हमारे नाम पर क्या हो रहा है, संसार में काम चल रहा है, ब्राह्मण जीवन का भाग्य। दूसरा हमारे काम का भाग्य, कर्तव्य का। आज भी आप देखेंगे कि दुनिया में जितने भी होंगे वो देवी देवताओं के कर्तव्यों का क्या करते हैं, या तो हमारे कर्तव्यों के आधार पर, हमने संक्रांत में संस्कारों का अंत कर दिया, उन्होंने मकर संक्रांति मना दी, हमारे जो जो कर्म के, दान के, सहयोग के, अलग अलग जो भी कर्तव्य हमने किए, आज भी उसकी परंपराएं क्या हो रही है, संसार में चल रही है। हमारे रूप का भाग्य, देवी देवताएं बन गए लेकिन कोई भी देवी देवताओं के जब गुणगान किए जाते हैं, गुणों का भी भाग्य वर्णन किया जाता है, साथ साथ रूप का भी भाग्य क्या होता है, वर्णन किया जाता है, नयन कमल, मुख कमल, पद कमल, स्वरूप का गायन, ये ब्राह्मण जीवन का जो हमारा फरिश्ता स्वरूप है उसका भी गायन, साथ साथ स्थान का भाग्य, हमने जहाँ जहाँ पैर रखे हैं, ब्राह्मण जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ पर क्या हो गया है, तीर्थ स्थान। यहाँ तक भी आबू के बारे में भी जब हमने पढ़ा तो कहीं पर एक अखबार में आया था कि ये वो स्थान है जहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं ने विश्राम प्राप्त किया। आपने देखा होगा शांतिवन की जब महिमा, आप बाबा ने जो वर्णन की थी, जब शांतिवन बन रहा था बाबा ने कहा ये ब्राह्मणों का विश्राम का स्थान बनेगा, और जो ब्राह्मणों ने विश्राम किया उसका दुनिया में भी गायन है कि 33 करोड़ देवताओं ने यहाँ पर क्या किया, विश्राम, हमारे स्थान का, जहाँ हम पैर रखते हैं उस स्थान को भाग्य मिल जाता है। और लास्ट जो भाग्य मिला है वो समय का भाग्य, हमारा जो भी समय है वो संसार के समय को बदल देता है, हमने अपने में बदलाव लाया तो संसार भी बदल गया। तो आप सभी ब्राह्मण जीवन, ब्रह्मा कुमार जीवन, बाबा ने ये मुरली जो चलाई थी वो तो गुजरात में वो नया वर्ष मानते हैं दिवाली का दूसरा दिन, लेकिन बाबा ने कहा हमारा तो नया वर्ष, नया युग, नई मुबारकें है, वो बनती रहे। तो ये नया जन्म है और इस ब्राह्मण जीवन नया जीवन का हम आनंद ले। हमारे में जहां पर भी हमें कहीं भी पुरानापन दिखाई पड़ रहा है उसको हम इस अव्यक्त मिलन में यहीं छोड़कर जाए, नए ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण, पक्के ब्राह्मण बनकर जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।